नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए एक बार फिर मैं आप सबके सामने हार्टी अंजलि उपस्थित हूँ भाई वीरेंद्र सिंह बैस जी की एक बेहतरीन संकलन के साथ। क्यों ज़रूरी है घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति, आइए आज इसका मार्मिक वर्णन सुनते हैं। शालू बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस टेरेस पे जाकर बैठ गई। उसका मन बहुत खिन्न था आज। सुहावना मौसम, हल्के बादल, हल्की फुहार और पक्षियों के मधुर गान कुछ भी उसके मन को सुकून नहीं दे पा रहे थे। जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी, वो सुकून उसे नहीं मिल पा रहा था। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नज़रें थोड़ी दूर पेड़ की ओट में खड़ी उस बुढ़िया पर जाकर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया, क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है। शालू की उदासी अब बेचैनी में तब्दील हो गई, मन में शंकाएं पनपने लगीं। इससे पहले भी शालू ने उसे 3-4 बार नोटिस किया था। 2 ही महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हुए, मगर अभी तक वह एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला लिया था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू बड़ी मुश्किल से उसका 5वीं क्लास में एडमिशन हो पाया। वो दोनों धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू उसकी स्थिति तो उस जड़ से उखाड़कर दूसरी ज़मीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई ज़मीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था। पूना में उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वह अक्सर रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस का काम देख लेती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा डे केयर सेंटर भी मिल गया था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को अक्सर जब उसे ऑफिस से लौटने में देर होती तो वहीं रहते। लाइफ बिल्कुल सेट थी, मगर सुधीर के इस तबादले ने सब गड़बड़ कर दी। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर अब इस घर की टोह तो नहीं ले रही है। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के साथ बच्चों का अपहरण करने की जो बातें हैं वो कुछ नई नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने इस बारे में उनसे बात की। सुधीर को भी थोड़ी सी चिंता हो गई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन से बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही और गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष बदस्तूर जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उसे बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने इस चेहरे को कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है ना सुधीर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है, शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊँगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही हो शालू, वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है। शालू का विस्मित चेहरा आगे की बात सुनने के लिए बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है शालू। क्या, मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बूढ़ी औरत उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है, देखने में तो बड़ा ही शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा भी वितृष्णा से भर उठा था। वहीं शालू याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी मुझे, जिस पर गायत्री नवास लिखा था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी सी फोटो भी थी। उसका चेहरा इस बुढ़िया से मिलता था, तभी मुझे लगा था कि इन्हें कहीं देखा है। मगर अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेना चाहती हैं? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है शांतनु से। शालू चिंतित हो उठी थी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है, ये उस कमरे में जाकर दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा, मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें न सही बाबा, उन्हें तो है, और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही। मगर शालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आई, क्षीण काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आँखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दे डाले। नजरें भर भर के उस पराये से घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आँखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। शालू के कहने पर वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रहीं, बंद आंखें लगातार रिस रही थीं। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था आरती पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर्राया था। यही कमरा था मेरा, कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर शांतनु के पिता के जाते ही उनकी आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें करके गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वे दोनों ही महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ, शालू गायत्री देवी को रोककर बोली और कमरे से बाहर चली गई। और इशारे से धीरे से उसने सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहा, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी शायद आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें, अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह, विस्मित हो गया सुधीर। नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर, आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों की देखभाल कर सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी, मुझे पीछे से घर की, बच्चों की, खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है शालू, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें इनके प्राण बसते हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं, और अगर कहीं मालकिन बनकर अपना हक जमाने लगी तो क्या, निकाल बाहर करेंगे, घर तो हमारे ही नाम पर है ना, ये बूढ़ी क्या कर सकती है। ठीक है, तुम बात करके देखो, सुधीर ने सहमति जताई। शालू ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा। वहाँ पर ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक ही परेशानी होगी, उन्होंने कहा। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है, आपके रहने से हमें आराम ही हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजरकर गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मंशा को समझ गईं, मगर उस घर में रहने के मोह को वो मना भी नहीं कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने लगी और घर में आते ही उनके सधे और अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर बुलाते, हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। अभी तक का सफ़र आप लोगों को ज़रूर बहुत अच्छा भाया होगा। आगे का सफ़र करने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए और मस्त रहिए। आप लोग बहुत ही धैर्यवान श्रोता हैं और मेरी कहानियों को बहुत ही धैर्य से सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।